全地。हम सभी कितने भाग्यवान हैं अगर ये स्मृति रहे तो सारा दिन कैसे बीतेगा, क्योंकि जब भाग्य याद आता है तो भाग्य बनाने वाला भगवान भी याद आता है। तो सिर्फ अपना भाग्य ही याद रहे, क्या थे और क्या बन गए, और उसके साथ में भाग्य क्या क्या मिला, अगर एक एक भाग्य की बात समय पर समय याद रखें तो दिल सदा ही भगवान और भाग्य को ही याद रखें। गीत भी सुना, सबका एक ही संकल्प है। क्या संकल्प है? बाबा के समान बनने का। तो समान बनने में हमको याद है 18 जनवरी के लास्ट डे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा हमको समान बनने के 3 शब्द बोले। 3 शब्द सुना के गए बाबा, वो सबको याद भी होगा। तो बाबा ने कहा, हम उसके बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है सर्वशक्तियों से संपन्न है। तो जहां सर्वशक्तियां होंगी वहां ये देह अवमान कहां से आएगा? अगर कहां रोशनी होगी तो रोशनी के साथ अंधकार नहीं हो सकता। तो जहां सर्वशक्तियां है वहां देह अवमान तो विकार हो गया ना, और वो अंधकार है, वो कैसे हमारे में हो सकता है? तो हम आत्मा तो है ही निराकारी। आत्मा ने साकार तन धारण किया है कर्म करने के लिए, लेकिन ओरिजिनल मुझ आत्मा का स्वरूप जो है वो तो निराकारी है ना। और शिव बाबा के हम बच्चे हैं, शिववंशी है, तो शिव बाबा निराकार हैं, तो हम उसके वंश भी आत्माएं निराकारी हैं। बाकी ये है कि साकार में प्रवेश हुए हैं, इसके कारण अगर अटेंशन नहीं देते हैं तो फिर साकार कर्म इंद्रियों के वश होने से निराकारी स्थिति से नीचे आ जाते। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो ये बाबा के जो महामंत्र हमको मिले 3 शब्द, उन 3 शब्दों में से एक शब्द कोई भी आप ले लो, चाहे निराकारी लो चाहे निर्विकारी लो चाहे निरहंकारी लो, एक शब्द में तीनों ही समाये हुए हैं। अगर हम ये समझें कि हम निर्विकारी आत्मा थे भी, आपको अपना जड़ चित्रों का याद रहता है ना, आपके मंदिर में पूजा हो रही है या नहीं? सिर्फ बड़े बड़े महारथियों की होती है, सभी की यहाँ अगर नहीं देखा हो, याद नहीं हो ना, तो यहाँ दिलवाला मंदिर में जाना और दिलवाला मंदिर में आपकी मूर्ति आपको दिखाई देंगी। और आप देखना तो हम कितने तपस्वी निर्विकारी निरहंकारी रूप में बैठे। तो हम तो थे ही निर्विकारी, आदि रूप हमारा सतयुग में कौन सा था? विकारी थे, निर्विकारी थे ना। और कितने वारी आप वो निर्विकारी स्थिति में पूजे जा रहे हो, हर कल्प में आप निर्विकारी, हम सब निर्विकारी बने। पूजन होता है हमारा सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, ये थोड़ी कहते हैं कि नहीं थोड़ा थोड़ा विकारी थोड़ा थोड़ा निर्विकारी। कोई भी देवता की पूजा करेंगे गायन करेंगे तो निर्विकारी संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं। तो निर्विकारी रूप तो हमारा पूजा भी जाता है, प्रूफ है कि हम ऐसे चैतन्य में बने थे, अब बन रहे हैं और हर कल्प में हम बनेंगे। अगर ये भी निश्चय हो जाए ना तो हमारा भाग्य हर कल्प में बना है। अगर किससे भी पूछते हैं कितने बार आप ब्राह्मण बने हैं तो कहते वो तो अनगिनत बार है ना, गिनती क्या करें कितने बार बने। तो जो अनगिनत बार बन चुके हैं वो फिर से बनना क्या मुश्किल है? कोई नई बात होती है ना तो वो मुश्किल होती है, भाई पता नहीं कर सके नहीं कर सके। हम तो अनेक बार बने हैं, अभी सिर्फ उसको रिपीट करना है और कुछ भी नहीं है, तो कितना सहज है। इसीलिए हमको याद है बाबा के पास जब साकार में बाबा थे ना, तो जब भी कोई भी ग्रुप आता था ना, जैसे आप भी तो ग्रुप में आए हैं ना, अभी टीचर के साथ ग्रुप में आए हैं, तो जब कोई भी ग्रुप बाबा से मिलते थे तो बाबा के दो तीन क्वेश्चन होते थे, इससे बाबा जानता था कि ये ज्ञान में ठीक है या नहीं है, कच्चा है या पक्का है, उन क्वेश्चन से ही बाबा परखते थे। तो बाबा जब भी साकार में मिलते थे तो जो भी ग्रुप आता था उनसे पहले पहले पूछता था, बच्ची या बच्चा, बच्ची तुम पहले कभी मिली हो? तो क्या होता है जो नए नए हैं उनको कल्प पहले की याद तो इतनी जल्दी आती नहीं है, तो वो कहते नहीं बाबा इस पहले वाली आई, पहले नहीं मिले हैं, इस वाली मिल रहे हैं। तो बाबा कहता था फेल, तुम्हारी पार्टी फेल। क्यों? क्योंकि इनको याद ही नहीं है कि हम हर कल्प मिले हैं बाबा से, पहले भी मिले थे अब भी मिल रहे हैं और फिर भी हर कल्प में मिलने वाले हैं। तो बाबा इससे हम लोगों को सर्टिफिकेट देते थे, जो भी पार्टी ले आते थे ना तो कहते थे ब्राह्मणी ने, हमारी हंसी में हम लोग कहते थे भाई ट्रेन की ट्रेनिंग है ये, क्योंकि जाते ही बाबा ये क्वेश्चन पूछेगा, तो ट्रेन में ही ट्रेनिंग देके आते थे तो ये बाबा पूछेगा और आप क्या उत्तर देंगे। तो और दूसरा क्वेश्चन बाबा पूछता था, बच्चे कितने बच्चे हैं आपको? तो जो भी होते थे दो तीन लौकिक, جو بھی ہوتے تھے وہ سناتے تھے تو بابا کہتا تھا فیل. ارے اچھے تھے, اچھا بچہ جو شیو بابا ہے اس کو تو سنایا ہی نہیں, تین ہی سنایا, چوتھا کہاں گیا؟ جو سکھ دینے والا بچہ وہ بھول گئی, اور تین جو تنگ کرنے والے بچے ہیں وہ کہتی ہو تین ہے, یہ کیا کیا؟ تو اسی لیے بابا یہ کوشچن پوچھتے تھے. تو اس کوشچن سے بابا سمجھتا تھا کہ اس کو گیان ہے یا نہیں ہے. آج کل تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, آج کل تو دادی پوچھتی ہے نئے کون آئے ہیں تو سبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں. باپ دادی پوچھتی بھی اسی ڈھنگ سے ہے, وہ تو رائٹ ہو آپ, لیکن بابا جو پوچھتا تھا نا وہ اس روپ سے پوچھتا تھا اور فیل کر دیتا تھا, کہتا تھا ابھی اس کو ٹریننگ ٹھیک نہیں دی ہے, برہمنی نے ٹھیک ٹریننگ نہیں دی ہے. تو یہ بھی ایک بابا کی پڑھائی کتنی رمنیک ہے. ہم کلب کلب کے ادھکاری ہیں, ایسے نہیں ہے کہ ہمارے طرف سے دوسرے آ جائیں گے, آ ہی نہیں سکتے, ہم ہی تھے. اگر ہم کو یہ نشہ ہو, سمرتی ہو, سمرتی سے ہی نشہ آئے گا نا. تو یہ نشہ اگر سمرتی میں رہے, سارے کتنی ورلڈ میں سنکھیا ہے, کروڑوں کی سنکھیا ہے, ان میں سے ابھی تک 6 لاکھ کا بھاگے بنا ہے. بس 6 لاکھ میں آپ تو ہو نا, کتنے کروڑوں کے بیچ میں بابا نے آپ کو کہاں سے چنا اور اپنا بنایا. ابو میں تو 1 سال کے بعد آتے ہو, لیکن بابا نے آپ کو کہاں کونے کونے سے چن لیا. فارن کو بھی نہیں چھوڑا, فارن کے کونے کونے سے بھی اپنے بچے چن کر کے اپنے بنا دیے. آپ نے دیکھا نا ابھی فارن والے کتنے آتے. تو اسی لیے اپنا بھاگیہ ضرور یاد رکھنا چاہیے. جو پراپتی ہوتی ہے, روا جی آج 1000 کوئی لاٹری نکل جاتی ہے 1 لاکھ کی یا کیا, تو نشہ چڑھ جاتا ہے. اور ہم کو بابا نے کیا سے کیا بنا دیا ہے, پدموں کے مالک بنا دیا ہے. برہمنوں کے لیے کہا ہی جاتا ہے ہر قدم میں پدم, ہمارے ہر قدم میں پدم کی کمائی ہے. کیوں؟ کہ ہم بھگوان کو یاد کرتے ہیں, اور بھگوان داتا ہے, ہمارا بابا ہے, لیکن ہمارا بابا داتا ہے. اسی لیے اس کے سمرتی سے ہم کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں اس میں پدموں کی کمائی جمع ہو جاتی. اتنا بڑا بھاگیہ آج 5000 برس سے لے کے چکر لگا کے آؤ, دیکھو ستیوگ میں بھی ایسا بھاگیہ نہیں ملے گا. وہ تو ابھی جو سنگم پر ملا ہے وہ بھوگیں گے وہاں پرالبد. دواپر میں دیکھو کوئی راجہ ہو, مہاراجہ ہو, مہان آتما ہو, دھرم آتما ہو, جو بھی ہو چکی ہے, انہوں کا اتنا بھاگیہ ہے کیا جتنا ہمارا ہے؟ ہم بھگوان سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں, ڈائریکٹ بھگوان سے ملتے ہیں, اور باپ کے روپ میں, ٹیچر کے روپ میں, ستگرو کے روپ میں, سخا کے روپ میں, کمپنی کمپینین سب روپ میں ملتے ہیں. اتنا بھاگیہ کوئی دھرماتما کا ہے کیا؟ وہ تو بیچارے پیغمبر, ہم تو پیغمبر ہے, پیغام دینے آئے بس. ہمارا بھاگیہ کیا ہے؟ तो अगर अपने भाग्य को हम याद करें तो परमात्म प्यार कितना हमको मिला, क्योंकि बाबा ने हमको ये सर्टिफिकेट दिया था तो और सब्जेक्ट तो छोड़ो लेकिन प्यार में सभी नंबर वन, ये परमात्मा ने हमको सर्टिफिकेट दिया। और आप सोचो अपने जीवन में आप किस आकर्षण से खींच के ब्रह्मण बने, सब कहेंगे हमको बाबा का प्यार, बहनों बाबा का प्यार, बहनों द्वारा जो प्यार मिला, प्यार की बातें सुनी, उससे ही हम ब्राह्मण बने। पहला फाउंडेशन परमात्म प्यार मिला। और आजकल सबको चाहिए भी प्यार, दुनिया में देखो माँ भी अगर प्यार नहीं देती है बच्चे को तो बच्चे संतुष्ट नहीं होते। प्यार से आप किसको सूखी रोटी भी खिलाओ उनको 36 प्रकार की वासना आएंगी, और बिना प्यार के 36 प्रकार का भोजन भी खिलाओ लेकिन उसका पेट नहीं भरेगा, संतुष्टता नहीं होगी। लेकिन हमको प्यार मिला है परमात्म प्यार। सोचो शब्द को सोचो, परमात्म प्यार ये किसको प्राप्त होता है? सिर्फ हम लोगों को जो यहां तक पहुंच गए हैं, औरों को तो प्राप्त नहीं हुआ ना। तो परमात्म प्यार के पात्र बन गए ये कम भाग्य है। दुनिया में भगत लोग तो कहते हैं देवताओं को बस एक सेकंड सिर्फ नजर पड़ जाए बस, और हमको तो बाबा ने अपने गोदी का बच्चा बना दिया। सारी जायदाद जो भगवान की है, सुख शांति आनंद प्रेम, इस सारे खजाने का मालिक बना दिया। और रहा क्या, जो भी जीवन में आप देखो, कोई भी चाहे साइंसदान है चाहे राजनेता है चाहे कोई भी है, बिजनेसमैन है या इंजीनियर है डॉक्टर है, जो भी कोई है, वो किस लिए ये सारा करते हैं? लोग कहते हैं ना, खून पसीना करके, भ्रष्टाचार करके, कुछ भी करके जो भी कमाते हैं किस लिए? अगर किससे भी लक्ष्य पूछो, भाई किस लिए ये इतनी भागदौड़ कर रहे हो आप, तो यही कहेंगे मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, बस और क्या लक्ष्य होता है। और हमको तो बाबा ने सुख का वर्षा ऐसा दिया है जो 21 जन्म तो हमको गारंटी है, हमारा सुख शांति जा ही नहीं सकता, माया की भी जाल नहीं चलेंगी। सतयुग में माया आएंगी क्या? उस बेचारी को दरवाजा ही नहीं पता है कि कहां से जाऊं। इसीलिए 21 जन्म हमारे सामने दुख अशांति आ ही नहीं सकती है, गारंटी भगवान की गारंटी है। कोर्ट में जाओ तो क्या कहते हैं, वो गीता उठा के कहते हैं भगवान को क्या, साखी समझ के जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे, और बोलेंगे सारा झूठ, वकील भी झूठ बोलेगा और उसे भी झूठ बोलवाएंगे, लेकिन फिर भी परमात्मा को सत्य कहते हैं ना, परमात्मा को साखी रखते हैं ना, जो परमात्मा को हाजिर नाजिर समझ के सत बोलेंगे। तो भगवान को वैसे भी कहते हैं शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। तो उसने हमको कहा है, 21 जन्म की गारंटी दी है, वो तो सत्य ही होंगी ना, वो थोड़ी कोई नीचे ऊपर हो सकती है। भगवान की वाणी कभी बदल नहीं सकती, सत्य है ना वो। तो इतना हमको बाबा ने अधिकारी बना दिया है। बाबा कभी कभी कहते हैं ना, बच्चों को मुझे देख करके रहम आता है, मैं कहता हूं याद करो, और बच्चे क्या करते हैं, फरियाद करते रहते हैं। अभी याद कहां और फरियाद कहां। फरियाद करेंगे, बाबा थोड़ा सा समस्या आ गई है ना, अभी थोड़ी सी शक्ति दे दो, ये फरियाद। याद करो अपने अधिकार को, अधिकारी है हम, हमारे बिना बाबा अधिकार किसको देगा, बिना बच्चे के और किसको अधिकार मिलेगा। तो मैं बच्चा हूं ना, मेरे को अधिकार नहीं मिले ये हो ही नहीं सकता। तो अधिकार से याद करें ना बाबा को। फरियाद क्यों करते हैं, बाबा थोड़ी सी आज शक्ति दे दो। भगत है क्या, बाबा ये थोड़ा हो गया है, क्रोध आ गया है ना, हमारा क्रोध ले लो ना। बाबा कहते हैं जब क्रोध किया तो मेरे से पूछ के किया क्या, अभी कहते हो ले लो। बाबा ने कहा है क्या क्रोध करो। तो इसीलिए अपना अधिकार और परमात्म प्यार में खोए रहो। अगर परमात्म प्यार में भी खोए रहे ना तो कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन परमात्म प्यार से किनारा होता है तभी समस्याएं आती। बाबा कहते हैं कहने में, सभी कहते हैं बाबा और मैं कंबाइंड है, मेरे साथ बाबा कंबाइंड है। अभी कंबाइंड कभी अलग होता है क्या, होता है, कोई देखा है कंबाइंड ऐसा होता है जो अलग भी हो जाए, कोई चाकू बाकू से अलग होता होगा, बाकी तो नहीं हो सकता। कंबाइंड है मैं और बाबा कंबाइंड हूं, और कंबाइंड होने के बाद भी कहते कंबाइंड है, लेकिन बाबा कहते हैं फिर जब समस्या आती है ना, कहते बाबा क्या करें, बाबा हो गया ना, बाबा अभी बताओ ना, ये क्या कंबाइंड अलग कैसे हो गए, क्यों हो गए कंबाइंड अलग। बीच में आती तो माया है, लेकिन माया की ताकत नहीं है अगर हम कंबाइंड रूप में स्थित है तो। जरूर कोई कमी हम करते हैं, भूल जाते हैं कि बाबा हमारे कंबाइंड है, अपने को अलग में मेहनत करते रहते हैं। आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज थोड़ा देह अभिमान आ गया, मोह आ गया, बस बाबा के कंबाइंड रूप को भूल गए। अकेला है तो वो डाकू भी अकेला करके ही लूटता है। बाबा का साथ, बाबा का कंबाइंड रूप बुलाती है माया, पहले पीछे वार करती, तो अकेले होवे ही क्यों, क्यों नहीं अपने कंबाइंड रूप को स्मृति में लाएं। और होती क्या है, छोटी छोटी बातें ही है, लेकिन छोटी अकेले होने के कारण छोटी बात हमको बड़ी लगती। फिर कहते हैं बहुत अच्छी अच्छी रूहरयान करते हैं ना भाई बहने, जब माया आती है ना तो हमको तो एक ही बात पर बहुत थोड़ा हंसी भी आती है। अगर किसको समझो कोई माया का विघ्न आ गया ना, उसमें पार हो गया, चलो ठीक है अनुभव कर लिया, लेकिन फिर दोबारा जब समझो क्रोध आया, एक बारी आ गया, समझ गया क्रोध खराब चीज है, आगे से नहीं करूंगा, फिर कर लेता है। फिर अगर पूछते हैं भाई तुमने तो पहले अनुभव कर लिया क्रोध का, फिर कैसे क्रोध किया? तो कहते हैं बहन जी, पहले जो बात थी ना क्रोध आने की, वो छोटी थी, अब भी जो बात आई ना वो बहुत बड़ी थी, इसीलिए फिर से क्रोध आ गया। अभी अपने आप से पूछो, क्रोध बड़ी बात थी, ठीक है आपके हिसाब से तो बड़ी होंगी, लेकिन हमारा बाबा कितना बड़ा है? शिव बाबा के लिए क्या कहते हैं? ऊंचे ते ऊंचा भगवान, है ना? आपको अपना घर याद है? कहाँ से आए हो आप? ये नहीं दिल्ली और बॉम्बे वाला घर नहीं, आत्मा किस घर से आए हो? परमधाम से आए हो ना, वो कहाँ है? ऊंचे से ऊंचा है ऊंचे से ऊंचा। हमारा बाबा कहाँ रहता है? ऊंचे से ऊंचा रहता है ना। अगर कितनी भी बड़ी बात है और आप अपने बाबा के साथ अपने घर में बैठ जाओ, तो आपके आगे कितनी भी बड़ी बात क्या दिखाई देंगी? छोटी दिखाई देंगी, बड़ी दिखाई देंगी? प्लेन में भी जाते हैं तो दिल्ली इतनी बड़ी क्या दिखाई देती है? प्लेन, परमधाम तो कितना ऊंचा है। तो बाबा कहते हैं बड़ी बात देख करके घबराते क्यों हो? चले जाओ शिव बाबा के परमधाम में, जाके अपने घर में बाप के साथ आराम से बैठ जाओ, तो आपको ये बड़ी बात क्या लगेंगी? छोटी लगेंगी ना। अब बड़ी बात होने से परेशानी भी आ जाती है, बहुत बड़ी बात है, बड़ी ये तो समझ में नहीं आता है, क्या करूं कैसे करूं, पहले तो मैंने हल कर दिया अभी नहीं कर सकता, फालतू व्यर्थ संकल्प चलते रहे। इसीलिए बाबा कहता है कि मेरे साथ को क्यों छोड़ते हो? चलो परमधाम में भी मैं हूं, साकार में भी मददगार हूं, जब परमधाम में ऊंची स्थिति की अनुभूति करनी हो परमधाम में आ जाओ, साकार में चाहिए तो बाबा साथ है, अलग है ही नहीं। गीत तो यही गाते हैं ना, साथ है हाथ है, तो ये कौन गीत गाता है? हम सभी का गीत है या कोई कोई का गीत है? हम सब का गीत है ना, बाबा आपका हाथ है आपका साथ है। इसीलिए बाबा से अलग कभी नहीं, अपने कंबाइंड रूप को पक्का याद रखो, अनुभव करो, सिर्फ याद नहीं रखना, अनुभव करो, सर्वशक्तिवान मेरे कंबाइंड है। हम कितने भी कमजोर हैं, लेकिन मेरा साथी जो है, कंबाइंड जो है, सर्वशक्तिवान, वो तो सर्वशक्तिवान है ना। अगर उस कंबाइंड रूप को याद करो तो कभी भी माया का वार हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? कंबाइंड रूप याद करो तो कंबाइंड के आगे माया आ सकती है? आ सकती है, नहीं तो क्या होता है? बाबा ने कहानी सुनाता है मुरली में, तो एक भाई था, उसके घर में चूहा आ गया, तो वो चूहे को निकालने गया बाहर, दरवाजा खोल के गया। अभी चूहे को छोड़ने गया बाहर, तो जब लौटा ना तो चूहे के बजाय बिल्ली आ गई। अभी बिल्ली को फिर निकालने गया तो आया, तो फिर कुत्ता आ गया, फिर कुत्ते को निकाला तो गधा आ गया। तो बाबा ने कहा ऐसे ब्राह्मणों की भी लाइफ होती है, विकार को, एक विकार को निकालते हैं दूसरा आ जाता है, दूसरे को निकालते हैं तीसरा आ जाता है, तीसरे को निकालते चौथा आ जाता है। अरे माया जीत बनना है तो बाबा को कंबाइंड रखो, तो दरवाजा ही बंद हो जाएगा, माया आएंगी नहीं। बार बार माया आवे और हम उसको भगाते ही रहे, यही उदयबुन का काम में ही लगे रहे। नहीं, हमको तो अपने आनंद प्रेम सुख शांति की अनुभूति का अनुभव करना है ना, कि इसी में ही लगे रहना है। इसीलिए बाबा कहता है कि मेरे कंबाइंड रूप को भूलो नहीं और मेरे से लो ना। बाबा कहते हैं देखो कई बच्चे ऊपर मुझे बाबा को भी आश्चर्य लगता है कि जब टाइम आता है काम का उस समय मुझे भूल जाते हैं। फिर कहते हैं पश्चाताप किया, बाबा को भूल गया ना, उस समय याद नहीं हुआ ना। अरे टाइम के लिए ही तो सब बातें दी है मैंने, और उस टाइम भूल जाते हैं। फिर बैठ के सोचते हैं ऐसा होता ना, ये बात याद करके मैं माया को भगा देता, लेकिन आ गई माया, अभी भगाओ उसको, लगाओ उसमें टाइम। तो ये कोई लाइफ है क्या? अगर युद्ध करते करते ही हम शरीर छोड़ देंगे तो क्या चंद्रवंशी बनेंगे या सूर्यवंशी बनेंगे? इसलिए युद्ध में ज्यादा टाइम नहीं दें, विजयी बन करके रहें। हमारा नाम योद्धा है या योगी है? आप योद्धे हो माया से लड़ने वाले कि योगी जीवन वाले हो? योगी जीवन वाले हम हैं। बार बार माया से लड़ाई करते रहे तो दिल शिकस्त भी हो जाते। कई भाई बहन कहते हैं क्या करें, बहुत पुरुषार्थ किया है, मेरे से विकार कोई भी एक विकार जो भी कमी होगी ना उसमें, कहते हैं हमारा वो विकार तो जाता ही नहीं है, मैंने बहुत कोशिश कर ली है, इसलिए मैं समझता हूँ मेरा भाग्य ही इतना है बस। अभी दिल शिकस होके बैठ गए, नुकसान किसको? अपने को ही नुकसान किया ना। दिल शिकस जरूर होंगे, बार बार अगर फेल कोई होगा तो आकर तो दिल शिकस तो हो जाएगा ना, लेकिन फेल होते क्यों है? यहाँ तो हमारा बाबा, हमारे हिम्मत रखो तो बाबा मददगार है ना हमारा, क्यों नहीं समय पर मदद लेते हैं? बाबा कहते मैं कहता हूँ जो भी बोझ है वो मेरे को दे दो, मैं बोझ लेने के लिए आया हूँ, वर्ल्ड सर्वेंट बन के आया हूँ। अब बोझ देते नहीं है, अपने ऊपर रख देते हैं और फिर जब बोझ से तंग होते हैं तो कहते बाबा चुराओ, बाबा चुराओ चुराओ। लिया ही क्यों बोझ जो चुराओ चुराओ कहते हो? किसने कहा आपको बोझ लो? बिना छूटी के बाबा के बोझ ले लेते हैं और फिर चिल्लाना भी पड़ता है। तो बाबा कहते हैं जो मैं कहता हूँ वो तो करो ना, मेरी मदद लो ना, मैं ऑफर कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा सब दुख दूर कर दूंगा। फिर दुख महसूस करने लग पड़ते हैं छोटी छोटी बात में। तो बाबा कहते हैं मेरी ऑफर को यूज करने का अक्ल नहीं है, समय पर यूज कम करते हैं। इसीलिए तो देखो हमारी 108 की माला में एक नंबर भी है तो 108वां नंबर भी है, तो एक ही टीचर 66 साल की दादियां भी मुरली तो वही पढ़ती है ना। 7 दिन के कोर्स के बाद जो भी स्टूडेंट आता है वो भी मुरली वही सुनता है, और 66 साल वाली दादियां भी वही मुरली सुनती है। मुरली एक ही है, मुरली दर भी एक ही है, कोई दूसरे दूसरे नहीं है। चाहे टीचर आपकी अलग अलग अपने सेंटर पर है लेकिन मुरली तो एक ही की आती है ना, अपनी मुरला थोड़ी बजाते हैं, मुरली तो वही बजाते हैं ना। तो मुरली एक है, टीचर एक है, पढ़ाई एक है, एक ही समय पर आते हैं, और फिर भी 16,000 का बेचारा जो 16,000 का लास्ट दाना होगा वो भी तो बाबा का ही बचा होगा ना। कहां 108 का एक नंबर, कहां 16,000 का लास्ट नंबर, क्यों क्या हुआ, फर्क क्या हुआ, पढ़ा ये एक ही, पढ़ाने वाला एक ही। लेकिन जो बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं उसको प्रैक्टिकल जीवन में यूज नहीं किया है और समय पर यूज करने की तरकीब नहीं आई है, विधि नहीं आई, इसीलिए नंबर बन गए। तो बाबा कहते हैं मैं ऑफर कर रहा हूं, मेरी मदद लो, लेकिन मदद लेने देते ही नहीं है। कहता हूं बोझ नहीं उठाओ, फिर बोझ उठा लेते हैं, मेरा मेरा छोड़ो, फिर मेरा मेरा कह देते हैं। मेरा कहा माना मोह हुआ, जहां मेरापन आता है ना तो दुख की लहर आएंगी। हम गए थे साउथ अफ्रीका में, वहां एक ड्रामा किया था उन्होंने मेरेपन का, मेरेपन में दुख कैसे आता है। तो उन्होंने एक ड्रामा स्टेज पर दिखाया, प्रोग्राम हो रहा था। तो एक माता थी, उसका बच्चा था, वो बच्चा जो है वो कहां बैठ गया होगा, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, बच्चे का नहीं हुआ था लेकिन कोई और का एक्सीडेंट हो गया था। वो लाश जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको ढक देते हैं ना सारा चादर से, तो वो माता जब चक्कर पर निकली तो देखा ये जो शरीर पड़ा है तो ये इसका बूट तो हमारे बच्चे जैसा ही है और ट्राउजर जो पड़ा है वो भी रंग वही है। वो देख करके और वो बहुत रोने लगी, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, रोई दुखी हो गई। तो क्या हुआ कि हवा में वो चादर थोड़ी हिल गई, तो उसने देखा ये मेरा बच्चा तो है ही नहीं, मुंह दिखाई दिया ना, तो कहा ये मेरा बच्चा तो है नहीं। एक सेकंड में रोना पूरा हो गया, हंसने लगी। अभी कैसे हंसने लगी कि मेरा सोचने से उसकी हालत क्या हुई और मेरा नहीं है तो एक सेकंड में क्या बदल गई। तो बाबा भी कहता है ये मेरा मेरा जो है ना, पहले मूल है मेरा, ये बॉडी कॉन्शियसनेस, देह भान, जिस देह भान से ही सब विकार उत्पन्न होते। मैं आत्मा हूं, इस देह को चलाने वाली आत्मा हूं, ये भूल जाता है। लेकिन देह के भान में फंस जाते, देह के भान में फंसना अर्थात आत्मा रूप को भूलना। फंसने का अर्थ ही ये है कि मैं आत्मा हूं, मालिक हूं, इस स्मृति से किनारे हो जाते, साधारण जीवन बन जाती है। समझो कोई काम कर रहे हैं ना, तो काम के ही संकल्प चल रहे हैं। 4 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, कहेंगे कोई बुरा संकल्प थोड़ी आया मेरे को, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक था। ठीक था ये तो अच्छी बात है, बुरे संकल्प नहीं आए, लेकिन मैं आत्मा हूं और आत्मा मालिक बन के इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली है, वो स्मृति और नशा रहा। देह भान भी स्मृति में नहीं रहा लेकिन देही अवमानी रहे। कई भाई ऐसे कहते मैंने तो आज किसको दुख नहीं दिया, कोई गलती नहीं की आज मैंने, کس کو دکھ بھی نہیں دیا، کچھ الٹا سلٹا بھی کچھ نہیں ہوا. بابا کہتے اس میں ہی خوش ہو جاتے ہیں. بابا کہتا ہے اچھا دکھ نہیں دیا، سکھ دیا، جمع کیا کچھ، کہ بس اسی میں ہی خوش ہے، دکھ نہیں دیا. دکھ نہیں دیا لیکن جمع کیا ہوا آپ کا؟ تو پھر تو یہی ہوا، جو کام کیا اس کے ہی سنکلپ میں رہی، کرم کے ہی سنکلپ میں سمے بیت گیا. جمع تو نہیں ہوا نا، سکھ تو نہیں دیا نا کس کو، اشانت نہیں ہوئے لیکن شانتی دی، اور اپنی بھی شانتی کی اسٹیج سمرتی میں رہی، انبھو میں رہی. اگر وہ پریکٹیکل انبھو میں نہیں رہی، دکھ نہیں دیا سکھ نہیں دیا، تو جمع تو کھاتا نہیں ہوا نا. اور جمع کا سمے ابھی ہے، ستیوگ میں تو جمع والا کھائیں گے، جمع نہیں کر سکیں گے. اور چھوٹا سا جنم جو ہے ہمارا، گمانے کے تو ہمارے 63 جنم ہوئے، لیکن جمع کرنے کا تو چھوٹا سا سنگم کا یگ ہے، ایک ہی جنم ہے، برہمن جنم. اور وہ بھی دیکھو 66 سال کے بعد آج نئے نئے آئے ہیں، 66 سال تو گئے، باقی کتنا سمے رہا. تو اتنے تھوڑے سمے میں اتنا جمع کرنا ہے، تو بابا کہتے ہیں جمع کا کھاتا تو دیکھو نا، گمایا نہیں اس میں، صرف خوش نہیں ہو جاؤ، جمع کتنا کیا وہ دیکھو. ابھی بابا آئیں گا نا، کل آئیں گا نا، تو سبھی سے پوچھے گا نا جمع کا کھاتا کیا ہے، اکاؤنٹ ٹھیک رکھا ہے، رکھا ہے سبھی نے اکاؤنٹ، بابا پوچھیں گا تو صحیح نا، کتنا جمع کیا. 3 ماس دیا تھا بابا نے، 3 ماس میں اپنا کیا کیا خزانہ جمع کیا، کتنا کیا، وہ حساب تو لیں گا نا بابا. اور ویسے دیکھا جائے ہے کتنا چھوٹا سا، جمع کا سمے بہت تھوڑا ہے، گمانے کے حساب سے تو کمانے کا سمے بہت تھوڑا ہے. اور اس کو بھی ہم اگر ایسے ہی گما دیں گے، تو پھر تو ریزلٹ میں کیا ملیں گا، پشچاتاپ تو کرنا ہی پڑے گا نا. اور بابا کے بچے بنے اور پشچاتاپ کے لائن میں کھڑے ہو. ہم کو یاد ہے کچھ سمے پہلے ہم کو ایک بابا نے درش دکھایا تھا، تو 2 لائن برہمنوں کی دکھائی. اس میں ایک لائن تھی پراپتی والوں کی، ایک لائن تھی پشچاتاپ والوں کی. تو تھے تو برہمن ہی نا، تو سمجھو 2 لائن ایسے سامنے کھڑی ہے، پراپتی والے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں جو پشچاتاپ والے، پشچاتاپ والے بھی پراپتی والوں کو دیکھ رہے ہیں. برہمن ہی تو ایک دو کو پہچانتے تو ہے نا. آپ سوچو اس سمے کیا حالت ہوں گی پشچاتاپ والوں کی. سمجھو ایک ہی کلاس کا ہے کوئی، اور اس میں کوئی ایک پشچاتاپ والا ہے، کوئی پراپتی والا ہے، تو پشچاتاپ والا پراپتی والے کو دیکھ کے اس سمے کیا حالت ہوں گی اس کی. تو اس سمے بابا نے درش دکھایا، تو دیکھو کتنا پشچاتاپ کرنا پڑتا ہے. تو آپ کبھی بھی اس لائن میں نہیں آنا، پشچاتاپ کے لائن میں نہیں آنا، غلطی سے بھی نہیں آنا، پراپتی کے لائن میں رہنا. اور پراپتی تب ہوں گی جب جمع کریں گے. اگر خزانے جمع نہیں کیا، سمے سنکلپ یہ سب سے بڑے خزانے. سمے ہم ایسے ہی 5 منٹ کوئی ملا، کیسے ہو، ٹھیک ہو. ہم کو یاد ہے کئی بہنیں اپنا انبھو سناتی ہے، بھائی کلاس کے بعد ہم نے ڈائریکشن دیا، ایسے 10-15 منٹ کا کوئی کام ہے جو کر سکتا ہے وہ رکے، باقی جو نہیں رک سکتا ہے تو چلے جائیں گے. تو اس سمے تو کہا بھائی نے तो भाई मैं नहीं रुक सकता हूं, मुझे काम है। ठीक है, काम है तो जाएंगा ना। लेकिन बाहर निकला तो वही भाई कोई मिल गया, पहचान वाला। क्लास में भी तो कोई कोई ज्यादा नजदीक होते हैं ना एक दो के, तो उनसे बात करते 15 मिनट वो खड़ा रहा। और बहन जी ने पूछा 15 मिनट है तो कहा है ही नहीं मेरे पास, और बात करते करते 15 मिनट के बजाय 20 मिनट भी ठहरा रहा। तो देखो ये टाइम वेस्ट गया या क्या हुआ, अभी बातें क्या करेंगे। कोई ना कोई घरू बात भी होती है, पहले शुरू करते हैं मुरली की बात, कलकत्ता से शुरू करते हैं और पहुंचते हैं दिल्ली के लाइन में, ये भी तो हो जाता है ना। तो इसीलिए ये टाइम वेस्ट चला जाता है, संकल्प भी वेस्ट बहुत जाते हैं। समझो कोई हमने ये देखा, अभी माइक है, मेरा कोई कनेक्शन है क्या इस माइक से, मेरे को बनाना है क्या माइक। लेकिन माइक समझो मैंने देखा, मैं ये काला क्यों किया है, थोड़ा सफेद होता तो बहुत अच्छा होता। ये तार भी देखो ऐसे टेढ़ी, अभी मैंने मेरा ये संकल्प चला, अभी ये वेस्ट है या बेस्ट है। मैं कहूंगी मैंने बुरा थोड़ी सोचा, मैंने तो सोचा ना ये तार सीधी होनी चाहिए ना। लेकिन वेस्ट कितना जाता है, जिस बात में हमारी आवश्यकता नहीं उस बात को सोचना माना वेस्ट। ऐसे आप अगर अपने को चेक करो ना, एक घंटे में कितना हमारा वेस्ट टाइम जाता है, तो आपको बहुत पता पड़ जाएगा कितना जाता है। ऐसे ही चल जाते हैं तो पता नहीं पड़ेगा, कहेंगे नहीं मैंने, मेरे से कोई गलती नहीं हुई, कोई बुराई बुराई हुई नहीं। लेकिन अगर सूक्ष्म रीति से हम चेक करें तो टाइम वेस्ट भी बहुत जाता है। और दूसरी बात है, दूसरे की बातें देखना सुनना इसकी रुचि ज्यादा होती है। अपने स्वमान में टिके, जो बाबा ने दो शब्द बोला है ना, स्वपरिवर्तन और स्वमान, अगर इन दो शब्दों के ऊपर अटेंशन आप दो, स्वमान में रहना है और स्वपरिवर्तन करना है। दूसरे को देखने से ये ऐसा क्यों करता, ऐसा होना नहीं चाहिए, ब्राह्मण होकर के भी ऐसा होता है, ब्राह्मण परिवार में भी ये होता है, ये होना नहीं चाहिए। अरे तुमको बाबा कहते तुमको जज बनाया किसने, ये होना नहीं चाहिए, ये क्यों होता है, ये जज का काम होता है ना निर्णय करना, तुमको किसने जज बनाया। अपना तो जज बनो, दूसरे का जज बनना तो मुश्किल है। तो इसीलिए दूसरे की तरफ देखो ही नहीं, हाँ अच्छा ही है तो देखो, बाकी उनकी कोई कमजोरी जो वो खुद हमको, मम्मा छोटे छोटे थे ना, मम्मा कहती थी गंदी चीज वो बाहर निकाल रहा है अपनी और आप उसकी गंदी चीज उठा रही हो, ये क्या स्वमान है। कमजोरी तो हर एक अपनी निकाल के अपने में शक्ति भरने चाहता है ना, और हम उसकी कमजोरी का ही वर्णन कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों, ये क्या, और क्यों शुरू हुआ, क्यों लगी। एक क्यों शब्द आ गया, व्यर्थ संकल्पों की क्यों न लगे, ये हो ही नहीं सकता। ये क्यों है गेट व्यर्थ संकल्पों के लाइन का, इसीलिए इसे क्यों क्या मैं जा ही नहीं, जो हो रहा है मैं अपने को चेक करूं, स्वमान में रहूं और स्व परिवर्तन करूं। दूसरे बातों में जाने की हमारे को छोटा सा जन्म मिला है, इसमें भी दूसरों के तरफ ही ध्यान देती रहूंगी तो अपने तरफ कब दूंगी, फिर तो ये मिलना ही नहीं है समय। इसीलिए स्वमान और स्व परिवर्तन इन दोनों के तरफ अटेंशन देने से जमा होगा, और बाबा का वर्षा जो हमारे को जन्म जन्मांतर का अधिकार मिला है उसको बहुत अच्छी तरह से प्राप्त कर और उस प्राप्ति के नशे में रहेंगे। ओम शांति।